ಅಸ್ತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷದ್ ಮೇ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಯೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರ ಹಮೇ ಸಿಖಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಅಪನೆ ಭೀತರ್ ಬಸೆ ಈಶ್ವರ್ ಸೆ ಕಹೇ ಕಿ ಹಮೇ ಅಸತ್ಯ ಸೆ ಸತ್ಯ, ಅಂಧಕಾರ ಸೆ ಪ್ರಕಾಶ ಔರ್ ಮೃತ್ಯು ಸೆ ಅಮರತಾ ಕಿ ಓರ್ ಲೆ ಚಲೋ. इस सारगर्भित संदेश को लिए आप जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में और सुन रहे हैं मुझे यानी प्राची प्रिया को. मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा. गुड मॉर्निंग शगुन.
अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू प्राची एंड टू ऑल द लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क. एंड यस, प्राची प्रिया हैज ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज दैट टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन वी ब्रिंग यू अवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू क्विकली टू द प्रोग्राम. वी हैव ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर the latest in national and international news, metro city updates where we tell you about your city as well as some historical information related to this day, that is 18th of July. All this and much more coming up, but first we'll start with the headlines.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉरिशस में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस औषधि केंद्र की स्थापना का वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के शुरू में किया था, जिसे अब पूरा किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना के अंतर्गत भारत में निर्मित और सस्ती दवाओं की आपूर्ति की जाएगी ताकि जन स्वास्थ्य और लोगों की खुशहाली को बढ़ावा दिया जा सके.
In a coordinated sea air operation, the Indian Coast Guard ICG has successfully rescued a stranded Indian fishing boat IFB Ashni with 11 crew on board about 80 nautical miles from Kochi, Kerala, amid heavy rain and challenging weather conditions. Defence Ministry in a statement said that the vessel was in a critical condition due to flooding from a hull rupture near the keel and loss of propulsion, which posed a threat to the safety of the security. An ICG Vilnia aircraft on maritime surveillance located the distressed fishing boat. A technical ICG team embarked onto the distressed boat, carried out de-flooding operations and provided necessary assistance.
महाराष्ट्र में गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ सीमा के एटापल्ली प्रखंड में कल शाम गढ़चिरौली पुलिस के C-60 कमांडो अभियान में 12 नक्सली मारे गए. एटापल्ली प्रखंड के वंडोली गांव के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सलियों की गोलीबारी के बाद जवाबी कार्रवाई में नक्सली मारे गए. गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक निलोत्पल ने बताया कि मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी तेज कर दी गई है. पुलिस ने नक्सलियों से गोला बारूद बरामद किया है. 6 घंटे की गोलाबारी में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल घायल हो गए हैं.
Another batch of 4,383 pilgrims left Bhagwati Nagar Yatri Nivas Base Camp in Jammu for the Kashmir Rally to perform pilgrimage to Amarnath Cave Shrine. The pilgrims left the base camp in a cavalcade of 157 vehicles early this morning. The batch included 3,222 men, 1,071 women, 8 children, 67 sadhus and 15 sadhvis. Of these, 1,701 pilgrims left for Baltal base camp at 3:14 a.m. and 2,682 for Pehelgam base camp at 4 a.m. from where they will proceed for their further journey to the holy cave shrine.
वहीं मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया. इसके अलावा तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आज उत्तराखंड, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.
U.S. President Joe Biden has tested positive for COVID-19 following his first event in Las Vegas. President Biden is vaccinated and he is experiencing mild symptoms. White House Press Secretary Karine Jean-Pierre said that Mr. Biden will be returning to Delaware where he will self-isolate and will continue to carry out all of his duties fully during that time.
और स्विडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल्स में आज भारत की प्रथम वरीयता प्राप्त सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मरियानो से होगा. ये मैच आज दोपहर स्वीडन के बस्ताद टेनिस स्टेडियम के सेंटर कोर्ट में खेला जाएगा. इससे पहले मंगलवार को सुमित ने स्वीडन के एलियास येमर को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था. और अब चलिए मेट्रो न्यूज की तरफ। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चेक इन सुविधाएं शुरू करने की घोषणा की है। ये सुविधा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध है। इस सुविधा के तहत यात्री इन मेट्रो स्टेशनों पर अपने सामान की जांच करा सकते हैं। डीएमआरसी ने बताया कि यह सुविधा एयर इंडिया के यात्रियों के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक और विस्तार एयरलाइंस के लिए यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर निगम ने एक वीडियो संदेश में बताया कि इन विद्यालयों में अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को कई तरह की निःशुल्क सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा नगर निगम के प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हुए नगर निगम ने बताया कि इस वर्ष निगम के करीब 150 छात्रों ने जवाहर नवोदय विद्यालय, 11 छात्रों ने विद्याज्ञान विद्यालय और 50 से अधिक छात्रों ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास की है। कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। श्री सिंह ने 22 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 दिल्ली मथुरा रोड और बाईपास रोड पर उचित प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कांवड़ियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए विशेष स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने द्वारका जिले से एक नाइजीरिया के ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 100 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ ही 50 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि द्वारका जिले की पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाकर तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। बढ़ते हैं अब मुंबई समाचार की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा आवंटित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के आदिवासी छात्रों को मदद मिलेगी। ये छात्र एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले आदिवासी छात्र हैं। राज्यपाल की उपस्थिति में कल मुंबई के राजभवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें 48 एकलव्य मॉडल स्कूलों में लागू किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोजेक्ट के लिए जेएनपीए के एससीआर फंड का उपयोग किया जाएगा। वहीं मुंबई का पहला भूमिगत मेट्रो रेल कॉरिडोर, जिसे मेट्रो लाइन 3 के रूप में जाना जाता है, वह 24 जुलाई से चालू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा की। मुंबई मेट्रो लाइन 3 33.5 किलोमीटर का भूमिगत मार्ग है, जो दक्षिण मुंबई को पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है। नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के सहयोग से ट्रांस हर्बर ट्रायम्फ द अटल सेतु स्टोरी इन पिक्चर्स नामक फोटो प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है, जिसमें भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल को दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में शानदार दृश्य दिखाए गए हैं, जो अटल सेतु के निर्माण में शामिल तकनीकी नवाचारों और पर्यावरणीय विचारों को उजागर करते हैं। यह प्रदर्शनी 17 से 31 जुलाई तक दिलीप परिमाल आर्ट गैलरी में दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है। चलते हैं कोलकाता समाचार की तरफ। पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 आपराधिक कृत्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई है। 7 सदस्यों वाली इस समिति की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और राज्य के वर्तमान लोकायुक्त श्री असित कुमार रॉय करेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। समिति भारत के 3 नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा करेगी। समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और आइए अब शगुन से जानते हैं कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की प्रमुख खबरें क्या हैं।
Okay, Prachi, I'm going to begin with Chennai. Godrej Storage Solutions, a provider of warehouse and storage solutions, is investing between Rs 350 and Rs 400 crore in a new plant in Chennai. According to Vikas Chadaha, Executive Vice President of Godrej and Voices Division, that manufactures pallets and shelves, Godrej Storage Solutions will soon expand into Australia for exports. He stated that the extension was intended to increase production capacity in anticipation of growth in the sector over the next two decades. With the Gulf Cooperation Council and the Philippines as its primary export destinations, Godrej Storage Solutions is expanding into new areas such as Australia. More news from Chennai. A 4-kilometer stretch from Santham Church to Napier Bridge along the marina will soon be developed into a bustling hub of culture and activity in a phased manner. Chennai Metropolitan Development Authority has taken up the Rs 10 crore project to transform Kamarajar Salai Promenade that is more associated with marina than with the heritage buildings, cultural programming like organizing heritage walks and tours, hosting cultural events and performances, and incorporating local artisans and craftspeople. There is a plan to enhance connectivity by improving crosswalks and pedestrian crossings, developing underground or elevated pedestrian walkways, and integrating public transportation. Moving on to Bengaluru, the Karnataka government has decided to put hold on the draft bill that ensure job quota for Kannadigas in the private sector after industry bodies and experts express their reservations. The Karnataka State Employment of Local Candidates in the Industries, Factories and Other Establishments Bill 2024 was passed in the Cabinet meeting on Monday. It proposed the appointment of Kannadigas to 50% of management position and 75% of non-management position and 100% reservation for Group C and Group D post in the private sector. However, Chief Minister has posted on X that the bill will be put on hold and passed after wider consultations. Moving on to Hyderabad now, in Telangana, women's rights activist Narella Sharda took charge as the chairperson of Telangana State Women's Commission in Hyderabad yesterday. A government order released last week to this effect stated that Sharda, who was a member of the commission, has been elevated to the chairperson's post after her predecessor Sunita Lakshma Reddy submitted her resignation. Sunita Lakshma Reddy assumed charge as the Women's Commission chief in 2021 and her tenure normally will have continued till 2026, but a resignation necessitated the government to appoint the new chairperson. So this was the updates from these three metro cities.
Aur ab ek nazar dalte hain aaj ke mausam par. Delhi mein badal chhaye rehne aur kuch ilaqon mein halki barish hone ki sambhavna hai. Adhiktam tapman 36 degree celsius aur nyuntam tapman 29 degree celsius ke aas pas rehne ka anuman hai. Mumbai mein samantah badal chhaye rehenge aur bhari barish hone ki poorn संभावना है. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का भी अनुमान है, जहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है.
Right now, the temperature in Chennai, Bengaluru and Hyderabad. We'll begin with Chennai. Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain and thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और आइए अब जाने आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में.
Right, we'll go way back in time. In the year 1968, Intel is founded in the Santa Clara, California. The Intel Corporation is the world's largest semiconductor chip manufacturer.
आज के ही दिन सन 1947 में स्वतंत्रता के बाद 3.5 आने कीमत का प्रथम भारतीय डाक टिकट जय हिंद जारी किया गया था.
In the year 1980, Madras Doordarshan Center transmitted their first color transmission for 1 hour in the afternoon, and this program was retransmitted simultaneously by Delhi Doordarshan.
आज के ही दिन सन 1962 में भारत चीन सीमा विवाद में चीन ने संघर्ष विराम की बड़ी घोषणा की थी.
And in the year 1980 again, second experimental launch of Space Launch Vehicle 3, SLV-3, was made by the Indians, made by 35-kilogram Rohini satellite RS-1. It was successfully placed in the orbit. The launch took place from Sriharikota, and India became the sixth nation to put a satellite into the orbit.
Bilkul, Kerala ke Thumba kshetra se pehla rocket chode jane ke saath hi Bharatiya Antariksh Karyakram ki shuruaat hui.
Right. In the year 1993, Dr. Banu Koeji, who is 75, he got the Magsaysay Award for Public Service.
सन 2021 में आज के ही दिन भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम ने युगांडा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्रमोद भगत ने 3 रजत पदक जीते.
In the year 1995, Disneyland, which is an amusement park which features attractions based on the creations of Walt Disney and the Disney Company, was opened in Anaheim, California.
और अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट और सबसे खूबसूरत सेगमेंट की तरफ.
राइट, एब्सोल्युटली.
तो आज राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है. वह भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे. राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था. चौमुखी प्रतिभा के धनी और खुद रंग कलाकार राजेश खन्ना ने करीब 1.5 दशक तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया, जिसके बाद हिंदी सिनेमा को अपना पहला सुपरस्टार मिला. राजेश खन्ना को 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला. सुनिए उनकी फिल्म सच्चा झूठा का एक सुनहरा गीत.
यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जा, बीत जाए नए सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ.
Well, Rajesh Khanna was considered and is considered as one of the greatest and most successful actors in the history of Indian cinema, and he's also known as the first superstar of the Indian cinema. His accolades include Filmfare Awards, and in 2013, he was posthumously awarded the Padma Bhushan.
और आज पुण्यतिथि है गायक भूपिंदर सिंह की. हिंदी सिनेमा की कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज देकर उसे बेशकीमती बना दिया. सुनिए फिल्म बाजार में उनका गाया हुआ एक गीत जिसका उन्वान है, करोगे याद तो हर बात याद आएगी.
गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो
And today we are also remembering S.V. Rangarao, the actor and filmmaker. He is known for his works in Telugu and Tamil films. He is regarded as one of the finest actors in the history of Indian cinema. He is known for movies like Chadarangam, Maya Bazaar, Bala Bharatam, Manadesam, Devadasu. In a career spanning nearly 3 decades, he has garnered various national and international honours.
और आज के ही दिन हम अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जेन ऑस्टिन को भी याद करेंगे. उन्होंने रोमांटिक फिक्शन के विषय पर आधारित कई उपन्यासें लिखी. उनके कार्यों ने उन्हें अंग्रेजी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध और प्रिय लेखकों में से एक बना दिया.
And Prachi, allow me to say one of her quotes from her novel Emma for our listeners also. If I loved you less, I might be able to talk about it more.
वाकई कितनी गहरी बात है ये कि हम जब किसी को पूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं तब निःशब्द हो जाते हैं.
एब्सोल्युटली. Today, we are also remembering Robert Gaston Fuller. His stage name is Bobby Fuller. He is a rock singer, songwriter and guitarist. He is best known for his song Let Her Dance and his cover of the Cricket's Eye for the Law, which he recorded with his group, the Bobby Fuller. And for you listeners, we have this beautiful song, Let Her Dance.
आज मेहंदी हसन की जयंती है. उन्हें गजल का सरताज माना जाता है. मेहंदी हसन मूलतः राजस्थान के थे. उनकी जन्म स्थान जो है वो लूणा गांव में, राजस्थान में एक गांव है लूणा है, वहां पर वो अवतरित हुए. इस समारोह में इन्होंने ध्रुपद और ख्याल की गायकी की. पेश करती हूं विशेष आपके लिए उनकी एक बेहतरीन गजल.
यकीन हो चला है न जाने मुझे क्यों, यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के कभी बन के आंसू.
Well, today, listeners, it's the birthday of the cricketer Smriti Mandhana. She represents the Indian women's national team. In domestic cricket, she represents Maharashtra cricket team. In June 2018, the Board of Control for Cricket in India, BCCI, awarded her the Best Women's International Cricket in BCCI Awards. And today it's also Priyanka Chopra Jonas's birthday, the actress and also producer. She's winner of the Miss World 2000 pageant. She has received numerous accolades, including National Film Awards and Filmfare Awards. She has been honored with the Padma Shri in the year 2016. We're talking about some of her films in which she has acted. Her work is very, very impressive in films such as Saath Khoon Maaf, Barfi, Mari Kom, Dil Dhadakne Do, and also Bajirao Mastani. And for you listeners, we have this beautiful song, Albela Sajan Ayure, from Bajirao Mastani.
आज बॉलीवुड के जाने माने गायक सुखविंदर सिंह का जन्मदिन है। किसी भी कलाकार की जो कद्र होती है ना, वो उसके नाम से ज्यादा शायद उसके काम से होती है।
राइट,
उसी में तो चमक आती है, ब्रिलियंस तो उसके काम में ही है।
राइट, वी मे फॉरगेट द नेम्स ऑफ द फिल्म्स बट वी डेफिनेटली रिमेम्बर द मेलोडीज, राइट, द सॉन्ग्स।
बेशक बेशक। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके बीट्स जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में सेट हो जाते हैं, चाहे वो पार्टीज में चले तब भी हम उन पर नाचते हैं, अपने कदम मतलब हमारे कदम थिरकते हैं।
right.
और हर तरीके से वो हमारे जो है निजी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो सुनते हैं हम उनकी फिल्म का एक गाना, उनकी एल्बम का बल्कि एक गाना, रमता जोगी। सुखविंदर सिंह ने फिल्म दिल से के गाने छैया छैया और फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के गाने हौले हौले से दवा लगती है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी जीता। सुखविंदर सिंह के गीत जय हो ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार भी जीता।
We remember that, right?
है ना? हाँ। इसी गीत ने 2010 में मोशन पिक्चर टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी जीता। और इतना ही नहीं, विशाल भारद्वाज द्वारा रचित एक हैदर जो फिल्म है, जो कितनी प्रोमिनेंट मूवी रही अपने वक्त की, उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। और उनको न जाने इसके अलावा, ये तो हम बहुत प्रोमिनेंट पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें जो दर्शकों का, जो श्रोताओं का जो प्यार मिला है, क्या वो किसी पुरस्कार से कम है? और वो हम ऐसे मेंशन भी नहीं कर पाएंगे।
एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज, जस्ट अमेजिंग परफॉर्मेंसेज एंड सॉन्ग्स डिलीवर्ड बाय हिम। एंड टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग लिसनर्स रेबेका शफर। शी इज एन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल। शी वॉज बॉर्न ऑन नवम्बर 6, 1967. She began a career as a teen model before moving on to acting. In 1986, she landed the role of Patricia Patty Russell in the CBS comedy My Sister Sam. The series, and she appeared in several films also, including the comedy Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills.
बिल्कुल। और आज नेल्सन मंडेला जी को भी हम याद करेंगे, उनकी जयंती है। वे दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला यहां के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपनी जिंदगी के 27 वर्ष कारागार में रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए बिताए। 1990 में भारत सरकार की ओर से नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया।
एंड टूडे इट्स ऑल्सो द बर्थडे ऑफ द क्रिकेटर Ishan Kishan. He represents the Indian national cricket team as a wicketkeeper batsman. He made his international debut in March 2021 against England. And he plays in the domestic cricket, he plays for Jharkhand. In December 2022, he scored 210 runs in 131 balls in a one-day international ODI match against Bangladesh, and that's why he became the youngest cricketer to score an ODI double century and the first to convert a maiden ODI century to a double century.
और अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे को यहीं समाप्त करने की। और सुनते रहिए हमें 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर।
Stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, which is coming up next, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you to all the listeners for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.